सब काल भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव महोत्सव में भाग लेकर के थक गए होंगे। कल व्रत भी रखे होंगे, रात को बड़े दिन भर कार्यक्रम था। तो भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की कृपा भक्त के जीवन में अनिवार्य बहुत आवश्यकता है। तो काल चतुर्दशी था और आज पूर्णमासी है। तो ये वैशाख पूर्णिमा तिथि अपने आप में एक महान तिथि है, पवित्र दिन है। और आज के दिन में श्री माधवेन्द्रपुरी पाद, आप जानते होंगे माधवेन्द्रपुरी जी, जो हमारे इष्टदेव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु जी है श्री ईश्वरपुरी पाद और उनके गुरु है माधवेन्द्रपुरी पाद, भगवान की दादा गुरु हैं। और मैं एक दिन क्लास में बताया था उनके बारे में, उनके महानता, कितने महान भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम भक्ति के वृक्ष के वर्णन करते हैं, शाखा वर्णन करते हैं, तो उनमें स्वयं कहते हैं कि माधवेन्द्रपुरी जो हैं इस प्रेम वृक्ष का मुख्य ट्रंक शाखा है, मुख्य तना बोलेंगे उसको क्या है। तो बाकी सब शाखा उनसे वही है, रूट तो स्वयं महाप्रभु है लेकिन जो मेन है वो माधवेन्द्रपुरी पाद है। और उनसे पहले इतिहास से इसे पता चलता है, माधवेन्द्रपुरी से पहले अनेक भक्त हुए भगवान के, अनेक मुक्त पुरुष हुए हैं, लेकिन भगवान को आपने भगवत्ता उनके ऐश्वर्य के द्वारा भगवान को प्रशंसा करते थे, उनकी भक्ति करते थे, मानते थे। माधवेन्द्रपुरी से प्रेम की पराकाष्ठा शुरू होने लगा और श्रीमन महाप्रभु द्वारा ये बता दिए, भगवान को ऐश्वर्य उनकी प्रशंसा जितने भगवान को प्रसन्न करता है, इनसे कई गुना ज्यादा भगवान को गाली देने से प्रसन्न होते हैं, ये सिखा दिए। भगवान से मिलने से जितने सुखी होते हैं, भगवान से अलग होने से उनसे और कई गुना ज्यादा सुखी। ये विप्रलंब भाव पर क्या रस के आस्वादन तो स्वयं महाप्रभु कराए। यदि गौर ना है तवे की है केवल गौर राधार महिमा प्रेम रस सीमा, ऐसो कैसे जान सकते थे। इसे गौरांग महाप्रभु का विशेष देन है। तो वो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि ये शुरुआत अफिशियली माधवेन्द्रपुरी से किए थे। माधवेन्द्रपुरी भगवान के विशेष कृपा पात्र है। तो उनके महिमा सब जानते हैं, जो गोवर्धन में गोपाल प्रकट कराए थे, जिनके लिए हम से चंदन उत्सव आदि आदि करते हैं, जिनके लिए भगवान ने अपने नाम एडिट करके चोर बना दिए, ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। तो उनके आज तिरुभाव तिथि है। तो तिरुभाव में आविर्भाव है, आविर्भाव होगा, क्योंकि तिरुभाव तो शांतिपुर फेस्टिवल होता है, खिचड़ी उत्सव, ये आविर्भाव तिथि है। चलो, और विशेष करके वृंदावन में आज प्रसिद्ध है, सभी लोग आएंगे राधारमण मंदिर में, लगभग 8:30 बजे से अभिषेक शुरू हो जाएगा और लगभग 12 बजे तक चलेगा। कई सैकड़ों लीटर दूध में अभिषेक होगा, 200-400 लीटर दूध डाला जाएगा और बाकी थोड़े थोड़े देते हैं, बाकी विशेष करके दुग्धाभिषेकम होता है, क्योंकि छोटे लाला है ना, ज्यादा सब चीज नहीं कर पाएगा, दूध में नहाते। तो श्री राधारमण देव के आविर्भाव के बारे में ऐसे कथा है कि राधारमण देव का आविर्भाव करता श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जिन्होंने षड गोस्वामी के अंदर अन्यतम है। श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पुरी गए। पुरी में कुछ दिन रह करके एकाध महीना, तो वहां से दक्षिण चले गए। दक्षिण भ्रमण में गए और जाकर के चलते चलते रास्ता में रुकते रुकते कई रामानंद राय से मिले, इसे मिल करके पहुंचे। अब जाके पहुंचे तो एक आध महीना लग गया, ज्येष्ठ में गए थे, आषाढ़ में पहुंच गए जाकर के कावेरी नदी के पास में रंग क्षेत्र, श्री रंगनाथ भगवान के विख्यात मंदिर है। आजकल तो रंगनाथ मंदिर में जाओ सारे बैरिकेटिंग ही घुस नहीं सकते, कोई जगह ही नहीं, लेकिन महाप्रभु के समय आज से 500 साल पहले इतने सुंदर था, कावेरी में भरपूर पानी था, आज तक पानी भी नहीं कावेरी में। तो कावेरी स्नान करने के बाद विशाल वो जो मंदिर है तो छोटा है, लेकिन उसका जो गेट है गोपुरम इतने विशाल, मैं मानता हूं सब इंडिया में सबसे बड़ा ऊंचाई होगा, विशेष सप्त प्राचीर है विशेष। तो उसको देख करके महाप्रभु प्रेम से आवेश होकर के गए और प्रवेश किए राधारमण मंदिर में, रंगनाथ मंदिर में प्रवेश करके वो बिल्कुल खुला था, कुछ था नहीं, आजकल जैसे ऐसे कुछ था नहीं, बिल्कुल मेन कोर्टयार्ड में जहां रंग भगवान का दर्शन होता था उनके प्रांगण में भगवान को देख करके, भगवान तो कीर्तनिया है ही है, वो कीर्तन उनके संप्रदाय, तो कीर्तन शुरू किए, नृत्य कीर्तन शुरू किए और आषाढ़ शुरू होता, चतुर्मास शुरू होता है, चतुर्मास में लोग बाग भारतीय लोग जो सनातन धर्म लोग हैं वो थोड़ा उनका नियम सेवा बढ़ जाता है, भगवत भक्ति बढ़ जाता है थोड़ा, है ना, नहीं सब जाकर धाम में रहते हैं, भगवत दर्शन करना, सब थोड़ा व्रत उपवास करना सब करते हैं। तो चतुर्मास में जाकर जब पहुंचे तो लोग उस दिन रंगनाथ के बहुत दर्शनार्थी आते थे, विशेष स्थिति था और चतुर्मास की शुरुआत था, तो इसलिए बहुत लोग दर्शनार्थी आते थे। और दर्शनार्थी आने से पहले तो महाप्रभु पहुंच चुके थे, पहुंच करके रंगनाथ भगवान के प्रांगण में नृत्य करने लगे, नृत्य कीर्तन करने लगे, हाथ उठाकर हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। तो जितने दर्शनार्थी आते थे, दर्शनार्थी होता था, पुजारी जो मुख्य पुजारी थे रंग भगवान के आरती करते थे, और वो जानते हैं आज के दिन तो हजारों लोग भीड़ आएंगे बहुत होगा, लेकिन वो आरती करता देखते कोई लोग ही नहीं है, क्या हो गया आज को पब्लिक नहीं आ रहे, आज तो स्पेशल डे है क्यों नहीं आ रहे, देखा आरती के बाहर देखा कोई पब्लिक नहीं, देखे तो पब्लिक तो बहुत है आज, लेकिन ठाकुर जी को कोई नहीं देख रहे, क्यों, ये सोने वाले ठाकुर को कौन देखेगा, ये नाचने वाले ठाकुर को कौन नहीं देखेगा, है ना, नहीं वो तो सोए हुए रंग भगवान और ये ठाकुर नाच रहे। अब उनका नृत्य बड़े अद्भुत था, तो हजारों हजारों लोगों का मन और अंतकरण आकर्षित किया था, सब आविष्ट चित्त होकर देख रहे थे, केवल देख नहीं रहे थे, सब भी नाच रहे थे और बोल भी रहे थे हरे कृष्ण कृष्ण, उनको भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, हजारों लोग चारों तरफ नाच रहे हैं, यहां तक कि वो पुजारी जो भट्ट महा से आरती करते थे वो जब देखे वो भी ऐसे देखने लगे, हाँ बाबा ये देखने के लायक है ऐसे की आरती कोई, अब जल्दी आरती करके आ गए वो आकर खड़ा होकर देखने के लिए, वो घंटों नृत्य किए महाप्रभु ने। नृत्य करने के बाद जब शांत हुए सारे लोग प्रणाम के बोलो अद्भुत, आज ही हमारा दर्शन पूरा हुआ, आज ही हुआ। तो वेंकट भट्ट महाशय जो मुख्य पुजारी थे वो आकर के प्रणाम किए, तो उनको भले अद्भुत है आप तो मैं समझते हैं आप मनुष्य है कि क्या है, ऐसे नृत्य ऐसे कीर्तन ऐसे रूप ठाणी, ओ हो महाप्रभु का रूप ऐसे था, लगभग 7.5-8 feet का हाइट था उनका, आजान लंबित भुजो कनकावदा तो संकीर्तने कपितरो, तो चमचमाते सोने जैसा रंग था, लंबे चौड़े हाथ ऐसे विशाल आकर्ण लोचन, अब जो ऊर्ध्वभाव होकर के नाचे वो गाये तो कौन नहीं देखेगा उसको ऐसे कुछ। तो आकर के बोले कि कृपा करके आप सन्यासी हैं तो मैं गृहस्थ हूँ, आज चतुर्मास की शुरुआत है, आज के दिन हमारे घर में भिक्षा ग्रहण करे तो हमारे कृतार्थ हो जाएगा हमारे। तो महाप्रभु तो जब गए थे उनको तो डेली कहीं ना किसी के घर में खाते थे, तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप मुख्य पुजारी है आपके घर में आ जाकर प्रसाद होगा बहुत अच्छा है, आज चतुर्मास के प्रथम दिन है, तो स्वीकार कर लिए उनके घर में आज भोजन लेने के लिए। तो वेंकट भट्ट बड़े प्रसन्न हो गए, अपने घर में खबर दी मैं आज एक सन्यासी लेकर आ रहा हूँ, इतने महान भव हैं ये है वो है। तो सारे बनाओ जो भी उनके साउथ इंडियन डिश सब तैयार करने लगे, और मध्यान्ह समय में महाप्रभु उनके असिस्टेंट के साथ गए। तो वेंकट भट्ट मैं बोलता हूँ तीन भाई थे भट्ट परिवार और श्री संप्रदाय के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो तो स्वयं रंग भगवान के हेड पुजारी थे और उनके ये वेंकट भट्ट थे, उनके परिमल भट्ट और एक भाई थे जो श्री संप्रदाय में सन्यासी हो चुके थे। हाँ, वो बैरागी थे। तिरुमल भट्ट, परिमल भट्ट, वेंकट भट्ट, ऐसे करतीन भाई थे और उनके ये बड़े थे वेंकट भट्ट। उनके एक ही लड़का था। अब ये लड़का केवल 11 साल प्लस था उम्र उसका, बड़े सुंदर लड़का था, उनका नाम था गोपाल। जैसे महाप्रभु गए उस पूरे भट्ट परिवार आया था उनको स्वागत करने के लिए। तभी जमाने में जो स्वागत करने का विधि था, प्रणाम करते थे, जल लेकर के पदधूत करना और स्वागत करना, फिर बैठा कर जो स्वागत अगरा कर रहे थे सारे परिवार के लोग आकर के, पुरुष स्त्री सभी, तो वे बेटा भी आया था उनका। वो आकर के देखा, फास्ट ग्लांस, उनके जीवन में प्रथम बार से उन महाप्रभु को दर्शन किया। दर्शन करके प्रणाम करते मूर्छित होकर गिर पड़ा, मूर्छित होकर गिर पड़ा, उठ नहीं रहे, सब उठे उठ नहीं रहे। अब तो रोना धोना शुरू हो गया, ये लड़का हो गया, क्या हो गया उसको, उठ नहीं रहा है। सब बोले ये क्या हो गया, वो तो मूर्छित हो गया, उठ नहीं, सेंस नहीं आ रहा है उसका। सब चिंतित होने लगे। महाप्रभु, कोई बात नहीं, महाप्रभु थोड़ा आगे स्टेप लिए, उनके श्री चरण उनके सर में स्पर्श करा दिए। हाँ, श्री चरण उठ गए, उठ करके अब तो प्रेम प्रवेश कर गया उनमें। इस प्रकार के महंगा वो भी रहते कीर्तन होकर के महाप्रभु प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार महाप्रभु के साथ रहे तो पूरे भट्ट परिवार राजी हो गया। वेंकट भट्ट स्वयं बोले, बोले देखो आप क्यों नहीं, और चतुर्मास में तो साधु लोग तो भ्रमण आदि नहीं करते, एक जगह में रहते हैं, तो वहीं रहती है ना, और हमारे बेटा बहुत आपके प्रति अटैच है, वो आपके साथ रहेगा, सेवा करेगा, आप स्वीकार करें तो। महाप्रभु स्वीकार कर लिए 4 महीने ही रहने के लिए। महाप्रभु कभी नहीं रहते थे कहीं, पूरी धाम में रहने के लिए, सन्यासी तो वैसे घूमते रहते, वहां क्यों स्वीकार कर लिए गृहस्थ परिवार में रहने के लिए। ऐसे नहीं कि यहाँ खान पान व्यवस्था ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ की, वहां प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी था, एक नए भक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना था हमको। गोपाल भट्ट को वहां प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ये देना था, इसलिए 4 महीने का कोर्स। आपका कितने महीने का ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्स होता है? महाप्रभु ने 4 महीने कोर्स दिए, ये कोर्स लिए उन्होंने चतुर्मास की कोर्स, तो इसलिए रुक गए। भले ये है तो अपना जो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो महाप्रभु रुके, वो तो बहुत आदान प्रदान गोपाल भट्ट के साथ हुआ, गोपाल जी के साथ। तो धीरे धीरे 4 महीना वहां रुके। प्रतिदिन महाप्रभु क्या करते थे, उनके दैनदिन ही क्रम था कि जाते कावेरी स्नान करते, प्रातोत्थान करके, नित्य कृत्य करके, फिर रंग भगवान के दर्शन करते, नित्य कीर्तन करते, फिर आकर के मध्याह्न भोजन लेकर थोड़ा विश्राम, उसके बाद हरि कथा। जैसे हमारा सिस्टम है, प्रभुपाद जी ने दिए हमको, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद तुरंत भागवत क्लास हो जाए, उसके बाद खा पी कर अपना अपना काम में जाए। पहले जमाने में तो ऐसा कोई सर्विस करने वाले थे नहीं, तो सर तो इसलिए वो बैरागी लोग थे, बोले क्या करें, सब काम था छोड़कर आए, तो इसलिए दिन में अपने भजन भजन सब कर लो, साधन भजन कर कर करके दोपहर तक भजन प्रदान पूरा करो, खा पी करके विश्राम कर, ठीक 3 बजे से शुरू हो जाए क्लास। ये आफ्टरनून क्लास हमेशा हुआ करता था। और फिर इलेक्ट्रिक लाइट तो था नहीं, सरकारी लाइट, मतलब जब तक लाइट दिखाई पड़े तब तक क्लास चलेगा, कोई टाइम नहीं रहता था, तो ये व्यवस्था था। तो महाप्रभु स्वयं प्रतिदिन कक्षा लेते थे, सत्संग करते थे। अरे भगवान स्वयं जब क्लास दें और उनके भक्तों से कैसा हुआ होगा, वो तो हम कल्पना कर सकते हैं। तो सारे लोग ऐसे भट्ट परिवार नहीं, आस पास के रंग भगवान के चारों तरफ रंगनाथ जी के सेवक, हजारों सेवक सब रहते हैं, सारे खींच करके आए, आकर के महाप्रभु के क्लास से सत्संग में बैठते थे। बैठ करके सारे बोले, बोले हमारा घर में एक दिन प्रसाद लीजिए, हमारे घर में एक दिन प्रसाद लीजिए। महाप्रभु 4 महीना रुकना था, 4 महीना 120 दिन होता ना, ओ हजारों लोग आ गए, सब आकर बोले हमारे घर में तो एक दिन भोजन लेना ही पड़ेगा, भट्ट परिवार हमारे घर में तो महाप्रभु मना नहीं कर सके। बोले लेकिन आप हजार लोके में हजार दिन थोड़ी रहूंगा, इधर मेरा तो लिमिटेड टाइम है। आप सब बोलते हैं तो एक एक साथ 20-25 लोग एक दिन एक ही घर में कुकिंग करेंगे, महाप्रभु पाएंगे। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन किए और कोई उपाय नहीं था, क्या करें। तो जो भी और यहां वेंकट भट्ट को संग दिए, वो पूरे रंग क्षेत्र के लोगों को उधारे। एक दिन तो उनको जो उनके मन में धारणा था कि विष्णु ही परमेश्वर हैं, परम भगवान है, वो कृष्ण उनके अंश है, ये भावना था। श्री समुदाय वैष्णव भाई ऐसे वैष्णव है, लेकिन महाप्रभु आराम से बड़े प्रेम से कथा छल में उनके मन से ये भाव को निकाल दिए, शुद्धिकरण कर दिए। तो इस प्रकार के महाप्रभु के वास्तविक सिद्धांत को सुन करके जो श्री संप्रदाय में बहुत पहुंचे हुए उच्च कोटि के सन्यासी थे पेरुमल भट्ट, वो तो बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे। उन्होंने समझ के बोले ना ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उन्होंने श्री संप्रदाय छोड़कर आ करके इसी संप्रदाय में फिर महात्मा बन गए। ऐसे की मनंती वही प्रबुदानंद सरस्वती पाद बने, गोपाल भट्ट जी के चाचा जी। प्रभुदानंद सरस्वती जो वृंदावन महिमामृतम राधा रस सुधा निधि, वो जो लिखे हैं, इतने बड़े आचार्य, उन्हें बड़े प्रकांड ज्ञानी थे। और वो जब सही तो मतलब दो प्रीचिंग किए महाप्रभु ने, एक तो गोपाल को और उनको भी कन्वर्ट करा दिए। तो वहां चार महीना रहने के बाद जब महाप्रभु चलने लगे तो सारे परिवार रोने लगे। गोपाल तो बार बार मुझसे उतना किसी को तो क्या करें, महाप्रभु में तो जाना ही पड़ेगा। तो गोपाल रोने लगा, मैं नहीं रह सकता घर में रहूंगा। तो सभी के सामने बालक गोपाल को बुला करके महाप्रभु बोले कि ऐसा करो, तुम घर में रहो, तू एकमात्र पुत्र हो, माता पिता की सेवा करो, वो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भजन में विरोध तो नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा करो। और जब तक वो हैं घर में तब तक घर में रहो, उनके देहांत होने के बाद आप वृंदावन आ जाना। देखिए मुझे इतना समझ नहीं है, जानकार नहीं है, लेकिन महाप्रभु के ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग कैसा होता था। ट्रेनिंग दिए घर में रहने के लिए, बोले बोले नहीं घर छोड़ के यहां हो ना। रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट दो दो उज्जवल उदाहरण है, दोनों को आपने घर में भेजे आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बोले जाओ घर में रुको, घर में रहो, जब तक आपके माँ बाप है तब तक घर में रहो, लेकिन खबरदार डोंट मैरी, शादी ना करना। ये बहुत कड़क आदेश देते उनको दोनों को, विवाह ना करी, वो बोली आदेश दिला। अब बोल करके उनके माँ बाप के सामने बोले, वो तो करेगा नहीं था ना, लेकिन आपके साथ रहेगा, सेवा करेगा, वो साथ रहे। और बोले आपके चाचा भी जाने वाले हैं, आपके साथ चला जाना उनसे, और मैं क्या करूं ना, इतने दिन तक पिता माता का सेवा करो और चाचा जी से शास्त्र अध्ययन करो। जो पेरुमल भट्ट प्रभुदानंद सरस्वती पाद होने वाले थे, महाप्रभु समझ गए थे बहुत बड़े विद्वान है और मेरा टीचिंग में बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अब नारायण से कृष्ण को आ चुके हैं, पल्ला बदल गया, अब वो पढ़ा सकते हैं उनको। बोले उनसे शास्त्र पढ़ो, पक्का होने के बाद फिर आ जाने। क्या चाचा भतीजा ऐसे बोले ना, आ जाना फिर। और तो महाप्रभु चले गए। तो इसके बाद में 12 साल के बाद 20 साल तक उन्होंने घर में रहे, फॉर 20 ईयर्स। उनके माता पिता जब तक 20 साल तक तो अपने परिवार में रहे, माता पिता की सेवा किए, वो पढ़ाई कर रहे थे चाचा जी से। 32 साल की उम्र में उन्होंने, उनके माता पिता जब गुजर गए तो सीधा वृंदावन के को, ट्रेन प्लेन था नहीं, पैदल में आए। अब कहां वो त्रिचिरापल्ली, वहां से पैदल में चलते चलते ब्रज में आए। और आशा था कि उनको क्या पता था महाप्रभु कहां, फोन तो था नहीं कि मेल वाट्सअप था नहीं। तो उन्होंने बोले कि महाप्रभु मुझे आदेश दिए हैं वृंदावन जाने के लिए, प्रभुदानंद सरस्वती दोनों को बोले। और दोनों वृंदावन आकर पहुंचे, रूप सनातन से मिले, पता लगाया, बोले महाप्रभु तो वृंदावन रहते नहीं, वो तो पूरी में रहते हैं, अरे हमको क्यों बोले यहां आने के लिए, मुझे तो उन्हीं के पास जाना था, उन्हीं को दर्शन करना था, उन्हीं का संग लेना, तो पागल होने लगा। बोले वो है ही नहीं, तो चिल्लाने से रोने से क्या होगा। तो उनको समझाने लगे, रुको रुको, रखा है वृंदावन है, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था, रुकवा करके। और महाप्रभु पुरी में रहते थे, प्रतिदिन उनका जो भक्तों में चर्चा होता था खूब बता रहे थे। दक्षिण भारत की चर्चा में मेन चर्चा था गोपाल भट्ट के बारे में। और सनातन को बोले थे वृंदावन में, बोले देखो एक लड़का आएगा, मैं प्रीचिंग किया हूं हिल का, वो ज्वाइन करेगा फुल टाइम अब जब वो आएगा तब मुझे इंटीमेशन देना, खबर देना कि वो आ गया करके। अब कि कब आएगा, 20 साल वेट करना पड़ा तभी आया। आकर जब पूछे तो मैं ही गोपाल महाप्रभु, मुझे तभी मिले थे जब 12 साल की उम्र में था। तब सनातन आदि बोले, अच्छा हमको पहले से बताते कि आप आएगा करके, अब इतना दिन बाद आए ना, मुझे जो जो कोर्स दिए थे वो कंप्लीट करके आया। माता पिता को बाहर आया मैंने, आप तो इतने प्रसन्न हो गए रूप सनातन आदि। उन्होंने चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखे कि महाप्रभु साहब आप जो बोले थे, जो लड़का को पिचिंग किए थे वो आ गया, अब आ चुका है, वहां आकर आपके लिए विकल हो रहा है, आपके दर्शन के लिए बड़े और आए हैं। और उनके चाचा जी तो सीरियस थे, वो तो चले गए अपने जो काम वन में बैठ के भजन करने लगे, और वो रूप सनातन के साथ रहे। और जब महाप्रभु को पत्र मिला, आना जाना होता तो भक्त लोग बदल में आते थे वृंदावन, पुरी जाना करते थे, पुरी मायापुर और वृंदावन, ये वैष्णवों के 3 हेडक्वार्टर है, तो हमेशा लोग भ्रमण करते हैं। तो किसके हाथ में जब चिट्ठी पहुंचा महाप्रभु के पास, महाप्रभु पत्र पढ़े, सारे भक्तों के मेल में बैठे थे, जब पत्र पढ़े कि गोपाल वृंदावन आ चुका है, खुद पढ़े, नाचने लगे, वाह 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 वाह, आज बहुत बड़े बात है, गोपाल आ गया, गोपाल। अरे आप जिसको बोले तो आएगा ही हो, कैसे ना हो सकता। बड़े प्रसन्न हुए, वो पूछे कि आप लोग कब वापस जाएंगे वृंदावन, बोले हम इस जाएंगे। तो महाप्रभु उनके हाथ में समन भेजे, अभी भी रखा हुआ है उनके लिए, एक वस्त्र, एक आसन, ये सब भेजे थे और कुछ चीजें से लेकर भेजे गोपाल भट्ट के लिए। तो मतलब उनको स्वीकार कर ही लिए गोपाल भट्ट, लेकिन बोले मेरे पास यही भेज दिए, वो खुद में उनको दर्शन करना चाहता था। तो रूप सनातन समझा, बोले नहीं, वो आपको दिए ब्रजवास के अधिकार, ये सब देख रहे आप यहीं रहो। नहीं मेरा मन नहीं मानता है, मैं एक बार उनको और देखना चाहता हूँ। बारम्बार रोने लगे तो महाप्रभु स्वप्न में आए, बोले गोपाल मुझे अब इस रूप में नहीं देख पाएगा, मैं वृंदावन अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन दर्शन अवश्य करेगा। न किस रूप में, मेरे दूसरे रूप में तो दर्शन करेगा। तुम ऐसा करो, तुम नेपाल जाओ, गंडुकी जाओ, वहां स्नान करो, वहां सालग्राम ला करके सेवा करो, और मेरा दर्शन होगा, मैं मेरे रूप में दर्शन दूंगा आपको। ऐसा तो महाप्रभु के स्वप्नादेश जब ऐसा हुआ, तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन से गंडुकी तीर्थ स्नान करने के लिए सालग्राम उद्देश्य में गए। ऐसे वर्णन आता है, धीरे धीरे पैदल में गए उन्होंने, देवबंद्य करके गांव है, अभी भी हरिद्वार के पास है, उस गांव में एक बार रुके थे। तो वहां में एक परिवार था जिनका ब्राह्मण परिवार था, उनके लड़के संतान नहीं होते थे, वो बोले इतने बड़े महात्मा व्रत से आए हैं, उनके घर में रखे सेवा पूजा के, बोले देखिए महात्मा जी कुछ कृपा करे, हमारा एक बेटा हो जाए, वो हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे, आपके सेवा में दे देंगे। तो बोले देंगे ठीक है, वो चले गए एक दिन रुक करके, लेकिन उनका पुत्र एक हुआ, गोपाल भट्ट को पता नहीं, वो गए वहां से जाकर के मुक्तिनाथ दर्शन किए, गंडुकी स्नान किए, दामोदर कुंड गए। वहां जब स्नान करके जलांजलि देना चाहते हैं तो उनके हाथ में सालग्राम आता है, वो बोले ये क्या सालग्राम, तो ले आने छोड़ दिए, फिर डुबके ले पानी उठा फिर आ जाए। ऐसे कई बार हुआ तो वो याद के यही बराबर आते हैं, तो इसी सालग्राम मेरी सेवा स्वीकार करना चाहते, महाप्रभु मुझे आदेश दिए थे सालग्राम लेके, वो तो स्वयं आ रहे हैं, मैं उठाएगा कि वो खुद ही आ रहे हैं। तो लिए और बोलते हैं कि एक ही सालग्राम ले, कम से द्वादश सालग्राम शिला लेकर के आए, वो आकर के उन्हीं की सेवा कर रहे थे। बाकी गोस्वामी लोग जो थे सबके अपने अपने विग्रह था, रूप गोस्वामी के गोविंद जी थे, सनातन जी के मदन मोहन थे, जीव गोस्वामी के राधा रमन थे, मधु पंडित के गोपीनाथ, सब अपना अपना विग्रह हैं, लेकिन गोपाल भट्ट जी के शिला। अब क्या करें, भगवान बोले इसी को सेवा कर रहे हैं, शिला सेवा कर रहे हैं। तो बस वृंदावन में रहकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो एक यही दिन आया जो काल का तिथि था, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन आया भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव की तिथि, और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी दक्षिणात्य ब्राह्मण है, इसलिए रूप सनातन आदि भी उनको सम्मान देते थे, वो तो अपने आप को नीच मानते थे, रूप सनातन आदि अपने आप को जवन मानते थे, जवन से भी इसे खूब, तो उनको बड़े सम्मान देते थे गोपाल भट्ट जी को, सारे बोलते नहीं क्लास वहीं देंगे सब कुछ, उनको बड़े आदर देते थे। तो एक पंजाब से सेठ आया था, इस जमाने से वृंदावन आते हैं बड़े बड़े लोग, आकर के जितने विग्रह थे दर्शन करके, वो कुछ अलंकार सब बहुत भेंट स्वीकार देता था, अलंकार आदि और ड्रेस भेष आउटफिट वगैरह देता था, बाकी सारे मंदिर में दिया। तो बोले ये तो बड़े गोसाई हैं, वो कथा कीर्तन खूब करते हैं, सारे उन्हीं के पास जाते हैं, शाम तो कथा होता है, बड़े गोसाई वो ये यमुना किनारे वहां रहते हैं। तो सेठ जी ने वहां आए, आकर गोपाल भट्ट गोस्वामी की कथा में बैठे। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी का नृसिंह चतुर्दशी का दिन था, उन्होंने विशेष कक्षा ले रहे थे, विशेष क्लास दिए नृसिंह प्रादुर्भाव का आविर्भाव की कथा। वो सेठ जी ने सुना बैठ करके, अंततः प्रसन्न होकर के बोला, मैं सारे मंदिर में दिया हूं, आपको देना चाहता हूं, आपको विशेष अलंकार और ड्रेस सब आपके विग्रह के लिए मैं देना चाहता हूं। वो जो देना चाहे वो गोपाल भट्ट बोले, अरे मुझे क्यों, मेरा विग्रह है ही नहीं। अरे सारे गोसाई का है, आपका तो होगा जरूर, आप तो सेवा कर रहे हैं ना। हाँ मेरा तो है, लेकिन मेरा जो विग्रह है वो ड्रेस पहनने के लायक नहीं है, ये तो गोल गोल पत्थर। ओह कैसे अलंकार पहनेंगे, कैसे ड्रेस पहनेंगे। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कहते हैं स्वीकार कीजिए। बड़े आग्रह करके वो देकर ही गया छोड़ करके। वो बोले क्या करूं, ये मानता नहीं, लेकिन वो मेरे विग्रह को देखा नहीं हो तो मुझे ऐसा ही सागराम शिला है, उनको मैं ड्रेसिंग क्या कराऊं, उनको जल तुलसी से सेवा हो जाता है। तो उस दिन शाम को नृसिंह आविर्भाव कथा शाम तक हो गया। लेकिन इस प्रकार चर्चा करके जब चले गए, वो सेठ जी ने उनको सब दे गया ऐसे भगवान की परिपाटी, भेष परिपाटी न चाहते हुए जब ऐसे दे गया, तो उसको लेकर के व्रत उद्यापन करके प्रारण करके गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी के पास जा करके अपने सोचने लगे। बोले प्रभु मैं मान रहा हूं, मैं तो हूं सबसे नालायक, इसीलिए तो प्रभु के दर्शन भी नहीं होता मुझे, और सबके पास तो बड़े सुंदर विग्रह रूप में प्रकट, मेरे पास तो गोल गोल शिला बनकर आ गए। बोलते हैं मैं दर्शन लूं, क्या मुझसे चीटिंग किया आपने, एक बार दर्शन लिए थोड़े चार महीने के बाद बस यहां भेज दिए, और है नहीं आप आते नहीं हो इसी प्रकार। अरे आपके स्वरूप में दर्शन करता क्या होता, बड़े दुखी हुए। बोले क्या कहूं, अभी अभी मैंने नरसिंह चरित्र आस्वादन करके आया, इसमें ये विषय आता है कि प्रहलाद एक बालक था, असुर कुल के जात बालक, छोटा 5 साल के बालक, क्या भक्ति क्या भाव था उनके अंदर, उनके लिए आप खंभे से निकल पड़े। खंभे को कोई पूजा भी नहीं करता, कोई मानता भी नहीं, जो उनके लिए खंभे से प्रकट हो पाए कि मेरे लिए इसी सागराम से नहीं निकल सकते, मेरे पास तो भक्ति है ही नहीं, काय के मेरे लिए निकलेंगे। उनके लिए तो राजभवन के खंभे से प्रकट हो गए, मेरे लिए तो मंदिर के अंदर शिला से भी नहीं निकल रहे, वो यहीं बैठे हैं और वो भेज देते हैं, फिर सेवक लाकर अलंकार वो साथ भी दे जाता, क्या करूं उसको, आपको कैसे चढ़ाओ, ना हाथ है ना पैर है ना क्या है, ना मुखड़ा है ना कुछ नहीं, कैसे करूं। ऐसे रोने लगे, अनुतप्त होने लगे, बोले मेरा तो ऐसे कोई भक्ति नहीं है, प्रभात का कैसे भक्ति था। वैसे ऐसे करके रात अनेक रात तक ऐसे अपने को अनुतप्त होकर के सोए। नित्य प्रति जितने भी सोए प्रातः काल में स्नान करके फिर आ करके उनके सेवा शुरू करते थे। तो आज सोने के बाद चतुर्दशी के रात को सोए थोड़ा लेट में रोध होकर के, और पूर्णिमा आज है, पूर्णिमा के दिन जल्दी उठ करके जमुना जी स्नान करके आए, क्योंकि तभी जमाने में इसे 3:30-4 बजे नहीं उठ सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट था नहीं कि 8-7 बजे तो होता ही नहीं था। ये सिस्टम सब हमारा मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन है। पहले जमाने में जो हमारे भारतीय परंपरा है, लोग घर में खाते थे, बाहर में टॉयलेट करने जाते थे, लेकिन आज की परंपरा बाहर में खाएंगे घर में टॉयलेट करेंगे, वो सब गर्व मानते हैं, अटैच बाथरूम। मैं तो कई कई स्टेट में देखा, कई कंट्री में देखा हूं, उनका पता नहीं, उनके आईन है कि किचन के साथ अटैच बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, हाँ नहीं तो उनका रूम बने ऐसे ऐसे। तो जो भी हो, तो उन्होंने, क्योंकि जब तक लाइट फैले अंधकार तो जा नहीं सकते, थोड़ा देर देखने लायक हो गया, 5 बजा होगा, इसे करीब स्नान करने गए, बाहर जाना होगा, वो डोल डाल जंगल ऐसे बोलते हैं, ऐसी भाषा लोटा डरी जाने का, लोटा ले करके जाना है, वो करकार करके जमुना जी स्नान करके जब आए, तभी भी सूर्योदय नहीं हुआ था, सूर्योदय से पहले सब कर लेते थे, करके आ करके मंदिर खोल करके जहां आसन अपने शालग्राम के जहां विराजमान कराए थे, सेवा करने के लिए अंधार था, खोल करके दीप जलाए, बोले ठाकुर जी को स्नान करो, आज पूर्णिमा है, आज पहले पहले स्नान कराओ। जैसे दीप जला के आपने सिरा के पास देखने सागर पास जाते हैं, अरे देख रहे आश्चर्य, ये क्या है, उनको लगा कोई सांप है ना क्या, क्योंकि सागराम फट चुके थे, दो भाग हो चुके थे, इसे खुल चुके थे, खुल करके उसके अंदर में श्री राधा रमण लाल की वो स्वयं प्रकट हो चुके थे। वो जो दामोदर शिला थे, वो शिला में स्वयं प्रकट होते, उनके मन को जान करके बोले तुम क्यों रिवर रहा है, उनके लिए खंभे से निकल पड़ा, तेरे लिए भी मैं निकल जाऊंगा, चिंता मत करो। अब ओवरनाइट निकल गए, उनको तो सभी पब्लिकली निकले थे, लेकिन उनके लिए पब्लिक ने हाथ में चुपचाप निकल गए, तो अकेला रो रहा है, तेरे लिए भी निकल जाऊंगा। अब स्वयं सालग्राम में थे, वहीं से निकले, निकल करके जो विग्रह आज भी दर्शन करते हैं, बड़े छोटे लाला के जैसा विग्रह है, वो कोई नहीं बनाया उसको, स्वयं आपने फाड़ करके निकल गए, सालग्राम सीधा गोल गोल पत्थर होता है, उसको फाड़ करके स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू विग्रह। अब ऐसे करके आप देखे होंगे, प्रसिद्ध है वही स्वयं विग्रह है। तो उनको जब देखे दिबले के पास में, बोले अरे इतने सुंदर भाव स्वयं प्रकट हो गए, और तो इतने प्रसन्नता हुआ, गोपाल भट्ट जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, तुरंत आकर के सबको खबर दिए, दौड़ कर बोले पूजा क्या करूं, सनातन पाद रूप गोस्वामी आदि जीवा जितने सब थे, बड़े बड़े महंत सब भक्त थे, सबको खबर दिए, ऐसे ऐसे घटना हुआ, कल रात को ऐसे ऐसे घटना हुआ, तो मैं रो रहा कर सोया, और सुबह देखा सालग्राम खुल करके उसके अंदर ठाकुर जी विद्यमान है, सारे बड़े बड़े भक्त आ गए, सुबह सुबह मंगलादश में भीड़ जम गया, विशेष अभिषेक हुआ, तो उसका नामकरण श्री सनातन पाद गोस्वामी किए, कि ये तो और कुछ नहीं है, हम जानते हैं आप जो बिकल हो रहा था महाप्रभु के दर्शन के लिए, ये महाप्रभु ही है, आप महाप्रभु को तो ये रूप में देखा, वास्तविक महाप्रभु 2 in 1 क्या है, राधा कृष्ण मृत विग्रह है, तो इसलिए वही रूप में महाप्रभु आपको दर्शन दे रहे हैं। बोले तू मुझे देखने दे, देख इस रूप में, तो इसलिए इन विग्रह का नाम होगा श्री राधा रमण लाल, राधा रमण नामकरण किए सनातन रूप आदि सारे गोस्वामी मिल करके, और इस रूप में महाप्रभु के संग प्राप्त के गोपाल भट्ट गोस्वामी, और बड़े भक्ति से उनको सेवा करने लगे। इस प्रकार श्री राधा रमण की सेवा करके वहीं रहे, नित्य सेवा उनके करने लगे। बाद में उन्होंने अनेक ग्रंथ को लिखा है, और क्योंकि सनातन गोस्वामी जो मुख्य थे, वो अपने को बहुत नीच मानते थे, यहां तक कि जो भगवान के आदेश था उनको वैष्णव के अभिधान आपको लिखना है, लेकिन वो तो लिखते थे, सनातन गोस्वामी कंपोज किए, लेकिन बोले कि अगर मैं मेरे नाम से लिख दूं शास्त्र में रचना क्या करके, तो बड़े बड़े पंडित लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी जमाने में जातिवाद खूब भारी था, पंडित लोग बोले ये मुसलमान घर में नौकरी करने वाला, वो क्या लिखा उसको पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, आपके नाम से पुस्तक को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो स्वयं संकलन करके कंपोज करके गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रार्थना को लेना, आप अपना नाम से उसको मनन करो, तो लोग पढ़ेंगे और ये दक्षिणात्य के ब्राह्मण इतने बड़े पंडित हो, फिर आपको पढ़ेंगे, तो इसलिए स्वयं रचना करके उनके नाम से निकालते थे, प्रोड्यूस करते थे। तो इस प्रकार कई शास्त्र और बहुत सम्मान देते थे, बोलते हैं आप ही है परंपरा आगा चलाएंगे, शिष्य ग्रहण करना वो करना, रूप सनातन तो बोलते थे हम नहीं करेंगे, हम तो नीचे हैं, वो स्वीकार नहीं करते थे, तो उन्हीं के बोलते थे करने के लिए। और जब रूप सनातन के जाने के बाद में सारे वैष्णव जगत में वरिष्ठ आचार्य कृष्ण गोपाल भट्ट रहे, विज्ञ पंडित थे, महाप्रभु के डायरेक्ट कृपा पात्र है, और धुरंधर ज्ञानी भी है, तो बड़े सम्मान था उनमें। अनेक दिन ब्रज में रहे, अनेक समय रहे उन्हें ब्रज में, राधा रमण की सेवा करते रहे। तो ऐसे कहा जाता है कि श्री जीव गोस्वामी पाद जो उनसे जूनियर है, सबसे जूनियर मोस्ट गोस्वामी है, 6 गोस्वामी सबसे कम उम्र वाले थे वो, वास्तविक उनका नाम जीव गोस्वामी, जीव के लिए वही गोस्वामी है, हम जैसे बद्ध जीव के लिए वही गोस्वामी है। ऐसे कहा गया है कि व्यास देव जी ने जगत कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, टोटल 4 लाख श्लोक रचना किए हैं व्यास देव जी ने, सब पुराण आदि मिला करके। बोले जीव गोस्वामी भी आपने समय में 4 लाख श्लोक लिखे, हो द्वितीय व्यास है, तो कुछ कम नहीं थे, इतने बड़े विद्वान पुरुष ही। तो उन्होंने भी वृंदावन में रहते थे, उनको नित्यानंद बाबा बोले महाप्रभु आपके परिवार को ब्रजवास दिए हैं तो आप जाओ ब्रज में, तो वही ब्रज में रहते थे। तो और भी जहां जहां अच्छे भक्त होते थे रेना उसके, तो उनको उनके गुरु जी लोग भेजते थे, बोले जाओ वृंदावन में जाकर जीव गोस्वामी पास से पढ़ करके आओ, वहां ट्रेनिंग लेकर आना, भक्ति में अगर प्रगति करना चाहते हो श्री जीव से जाकर ये सिद्धांत आदि पढ़ करके आओ। तो तभी जमाने में जीव गोस्वामी जो पढ़ाना शुरू किए थे ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष करके कई लोग थे, तीन मुख्य का नाम आता है, एक श्री नरोत्तम ठाकुर, दूसरे श्री श्रीनिवास आचार्य, दूसरे श्यामानंद पंडित, और तीन जगह से आए थे। नरोत्तम ठाकुर महाशय तो ऐसे हैं जिनके जन्म होने से पहले महाप्रभु भविष्यवाणी कर दिए, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, वो जन्म ही नहीं हुआ था उनका। लोग पूछे किस लिए महाप्रभु किसका नाम ले रहे हैं, बोले अभी आएगा, अभी बुकिंग एडवांस में कर रहा हूं, वो आएगा, नरो में उत्तम वही होगा। सचमुच जिनके जन्म होने से पहले महाप्रभु जिसका नामकरण कर चुके थे, जिनके लिए जन्म होने से पहले प्रेम डिपोजिट रखकर गए थे, फिक्स डिपोजिट पद्मा नदी की, बोले आप रखो वो आएगा उनको देना, मैं कैसे पहचानूंगा, वो आईडी बताओ, बोले कुछ जरूरत नहीं, वो जैसे आएगा आपके अंदर उत्ताल तरंग उफान उठेगा तो ही समझना उसको दे देगा। तो ऐसे नरोत्तम महाप्रभु के सीधा कृपा पात्र है, वो भी आए वृंदावन, उनको सब बोले भाई आप भक्ति से जानना चाहते हैं पढ़ाए तो जीव गोस्वामी से पढ़ो। और श्रीनिवास आचार्य वो भी समझ करके वो भी आए थे, वो भी आए ब्रज में पता लगाए, वो महान विद्वान ब्राह्मण पंडित थे, वो भी आए उनसे पढ़ने के लिए। और श्यामानंद पंडित, श्यामा अनंत नाम पहले बाद में पढ़ा उनका, पहले का नाम उनका जो शिष्य थे उनका गुरुजी का नाम था हृदय चैतन्य, हो उनके बारे में बड़ा किंवदंती है, हृदय चैतन्य चैतन्यदास नाम था लेकिन भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए, गुरुजी देखे कि चैतन्य महाप्रभु उनके चले गए हृदय में घुस गए, तो नाम हृदय चैतन्य पड़ा। ऐसे तीन महामहिमाशाली भक्त वो आए, आकर जीव गोस्वामी के स्कूल में पढ़ने लिए आए ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जीव गोस्वामी उनको पता नहीं कितने दिन का कोर्स पढ़ाए उनको, पढ़ने के समय में एक तो श्यामानंद जो थे, श्यामानंद हृदय चैतन्य जो थे, और नरोत्तम दास ठाकुर थे, और श्रीनिवास आचार्य थे, और तीनों जीव गोस्वामी के स्टूडेंट रहे। जीव गोस्वामी केवल पढ़ाते नहीं थे, उनकी सेवा में भी लगाते थे, बोले केवल शास्त्र पढ़ने से वो समझ में नहीं आएगा, सेवा के साथ ही शास्त्र समझ में आता है। हाँ, इसलिए सेवा, मैं कल बता रहा था ना, भगवान भी कहते हैं अगर भगवत तत्व समझना होगा तो तीन कार्य अनिवार्य है, प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, सेवा के बिना भी समझ नहीं आएगा। तो पूछो, सरेंडर करो, नहीं सेवा भी करो। तो वो सेवा उनको दिए थे, जो वो समय तीनों को अलग अलग सेवा दिए थे। हृदय चेतन को बोले तुम झाड़ू दो, क्लीनिंग सर्विस वृंदावन में जहां जहां है कुंज आदि में सब जाकर झाड़ू दो। और नरोत्तम ठाकुर को भी उनके सेवा दे, बोले को महात्मा की सेवा करो। श्रीनिवास आचार्य बोले आप भी को महात्मा की सेवा करो, क्योंकि आप दोनों इनिशिएटेड थे नहीं, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, वो नए भक्त से इनिशिएशन नहीं हुआ था, और श्यामानंद हृदय चेतन का इनिशिएशन हो चुका था। जिनका इनिशिएशन हो चुका था उनको डायरेक्ट क्लीनिंग सर्विस, झाड़ू मारने का सेवा, जिसके दिखे हो चुका है वो कौन सा सेवा करेगा, झाड़ू सेवा करेगा, और जिसका दिखा नहीं हुआ नए भक्त है वो जाएंगे डिवोटी की सेवा करने के लिए। हाँ, उनको भेजे सेवा करने, ये युवक संघ नहीं बोलता, और भेजे कहाँ कहाँ, वो चुन करके बोले देखो युवक संघ पता था, तो श्रीनिवास को भेजते थे सबसे मैच्योर्ड सीनियर गोस्वामी थे गोपाल भट्ट उनके पास, और नरोत्तम जी समझते तो लोकनाथ गोस्वामी, जब छह गोस्वामी नाम नहीं आता लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट गोस्वामी ही है, सबसे पहले वृंदावन आए थे, बोले उनके पास जाओ, क्योंकि उनको पता था कि उनके गुरु जी यही होंगे और उनके गुरु जी ये होंगे। जीव गोस्वामी उनको पहले से भेजे, आप उनसे आतात रहो, उनके सेवा करो, उन्हीं के एस्पायरिंग बनना है, इसलिए उनके पास भेजे थे। वो जाके सेवा करते थे, उनकी प्रतिभा से आकर्षित हुए ही। वो बड़ी लंबी कथा है किस प्रकार नरोत्तम दास, तो लोकनाथ तो कसम खाकर बैठे थे मैं सबसे नीच हूं, मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा सेवक के रूप में, लेकिन नरोत्तम दास के दैन्य के सामने उनको हार मानना ही पड़ा। ऐसे राजपुत्र थे नरोत्तम, लेकिन ऐसे धन्यता लोकनाथ को हार मानना पड़ा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने बड़े पंडित विद्वान थे ब्रह्म, लेकिन वो भी श्रीनिवास आचार्य की सेवा और उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर के आपने की सहर्ष शिष्य रूप में स्वीकार किए थे। और तीनों होनहार स्टूडेंट निकले जीव गोस्वामी के इंस्टीट्यूशन से, तीनों होनहार स्टूडेंट निकले। निकलने के बाद गुरुजी को पूछे, हम गुरु दक्षिणा देंगे, अब गुरुजी आप इतने हमको शास्त्र पढ़ाए, इतने हमको किए, हम अब आपके लिए क्या करें। तो जीव गोस्वामी का मेंटालिटी देखिए क्या था, क्योंकि जीव के लिए वही गोस्वामी थे। वो बोले, बस अभी आप साधन में, ज्ञान में, दोनों में प्रवृद्ध हो चुके हैं, अब मैं चाहता हूं, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आप ये जो शास्त्र अभी पढ़े और जो लिखे गोस्वामी ने लिखे, उसको लेकर के भिन्न भिन्न जगह में प्रचार में जाओ। तो जीव गोस्वामी के सलाह से दी फास्ट ट्रैवलिंग पार्टी, यही तीन डिवोटी शुरू किए थे ट्रैवलिंग संकीर्तन। इन तीनों प्रगत भक्त जो इतने साधना विद्वान, इस प्रकार होकर के तीनों ही, अब ट्रैवल ट्रैवलिंग बस तो था नहीं, गाड़ी फेड़े तो था नहीं, बैलगाड़ी में, वो भी बीबीटी तो था नहीं, जो भी पोथी, हाथ लिखा पुस्तक पोथी, उन्हीं को लोड करके सब लेकर के गए। कई बैलगाड़ी लोड था, बहुत पुस्तक था लिखे थे उस समय लोग ने, पुस्तक लेकर के गए तीनों। और उनको बोले, आपने उन्होंने फील्ड में प्रचार करना है, जो पुस्तक मांगेगा उनको देना, कॉपी करके ले जाए, क्योंकि पुस्तक दे देंगे तो मूल क्या मिलेगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन जो बुक खरीदेगा, पैसा भले ना दो, बुक को लिख करके लेना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरा बुक है नहीं। इस प्रकार स्थिति था। हम लोग तो ये सौभाग्य है, जितने मर्जी बुक्स प्रिंटेड निकलता है। भक्त विनोद ठाकुर के जमाने में भक्त विनोद ठाकुर एक चैतन्य चरितामृत ढूंढने ढूंढने परेशान होकर मिल नहीं रहा था। अंत दिनाजपुर में कहीं एक भक्त घर में था पोथी, वो जाकर कॉपी के लिखे उसको, बताओ। तो हाथ लेकर पोथी से कॉपी करना कितने आजकल जिरक्स में भी टाइम लगता है, हाथ में कॉपी करके लाए चैतन्य, उसको लाकर पढ़े, तब चैतन्य शिक्षा को प्रचार किया, नहीं तो चैतन्य की महाप्रभु की शिक्षा तो भी खत्म होने वाला था। 12 अपसंप्रदाय हो चुका था, उसमें गड़बड़ हो चुका था। लेकिन इस प्रकार से हमारे लिए तो कितने बोलने से ही डिस्काउंट रेट में फ्री मिल जाता है चेतन चरित्र में, ऐसे हाल है। तो फिर भी इन तीनों को इस हस्तलिखित ग्रंथ को दे करके उन्होंने भेजे प्रचार के लिए, और आए थे वृंदावन रहने के लिए। वो बोले कि नहीं, वृंदावन रहना नहीं, आप जाओ अपने काम, टीचिंग फील्ड में जाओ, वही है आपके लिए। इसमें होते गुरुदत्त देश ही वृंदावन, गुरु जी आपको जो देते हैं एरिया, वही मान लो, यही मेरे लिए ब्रज है। तो उन्हें गए, नरोत्तम ठाकुर तो उनके लोकनाथ जी के एक ही शिष्य थे, ना आगे ना पीछे कोई नहीं, और वो वृद्ध हो चुके थे बिल्कुल, सबसे बड़े वृद्ध थे, और इतने वैरागी थे, कुछ नहीं था, बिल्कुल मेंढ हो चुके थे बेचारे, बिल्कुल वृद्ध थे, अपना काम करने मुश्किल थे। लेकिन जब उनके पास गए, जीव गोस्वामी सोचे ये ठीक नहीं होता है, उनको एक सहायक चाहिए, उनको एक हेल्प चाहिए, और सबसे सीनियर मोस्ट गोस्वामी लोकनाथ जी हैं, और इतने अपने आप को धन्यता में रखते हैं, नम्र है। तो नरोत्तम देखो, आप पूछेंगे आपके गुरु जी से, अगर वो अलाव करेंगे तो आप जाना संकीर्तन में, नहीं तो आप रह जाओ, बाकी दोनों तो जाएंगे। तो जीव गोस्वामी गए उनसे परमिशन लेने के लिए, उन्हें पूछने के। जब लोकनाथ जी को पता चला कि उनको संकीर्तन भेजना चाह रहा है, तो पूछने से पहले वो बोले कि मैं पूर्ण आशीर्वाद देता हूं, वो जाए, नरोत्तम बेटा तू जा, तू जा। अब क्या क्या गुरु जी बोल दिए, जा करके सीधा बोल दिए। तो जीव गोस्वामी बोले, कोई बात नहीं, आप जाकर आ जाना, दो महीने के बाद फिर आ जाना। नहीं नहीं नहीं, आना नहीं, आकर क्या करेगा, हमेशा जा। लोकनाथ जी ने स्वयं अपने तरफ से बोले, वापस नहीं आने का, जाओ हमेशा प्रचार में, मेरे क्या करना है। वो नहीं चाहते थे, इतने अवस्था में थे, फिर भी बोल दिए नहीं जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ही आशीर्वाद दिए, और जीव गोस्वामी तो स्वयं थे ही श्यामानंद प्रभु, वो तो राधा जी के आशीर्वाद प्राप्त करके श्यामा जी के आशीर्वाद से नाम श्यामानंद पड़ा था। ऐसे ऐसे भक्त वो ट्रैवलिंग संकीर्तन में निकले प्रचार के लिए। तो इससे हम ये जान पाते हैं कि स्वयं श्री भगवान के, उनके भक्तों के, महाप्रभु के, राधा जी के, सभी के जो वास्तविक ब्रजवासी संत हैं, जो व्रत की महिमा को जानते हैं, जो इतने बड़े भजनानंदी संत हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही इच्छा रहता है कि यही प्रचार हो, क्योंकि भगवत इच्छा यही है। और तो क्या कहें, हम तो ज्यादा पुराने नहीं जानते, हमारे जो परात्पर गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जिन्होंने प्रचार के मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य, उससे पहले तो कोई मठपट था ही नहीं, गोड़े मठ अगरा के प्रतिष्ठाता वही शुरू किए, इतने बड़ी प्रचार उन्होंने उन्होंने जो साधना किए, 9 साल तक महापुर में खान अपना छोड़कर के कितने भारी करोड़ों नाम के व्रत लिए और साधना किए, इतने उत्कट साधना के फल से ऐसे मदंती है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद पंचतत्व के साक्षात्कार हुआ, वो दर्शन किए, भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद उनके मन में भाव आया ये भजन फजन बैठ करके नहीं प्रचार करना है, तब उन्होंने वहीं पर मायापुर में मठ के शुरुआत के साथ प्रेस, फर्स्ट प्रेस उन्होंने बनाए, वो ब्रिटिश के समय में, अब ये प्रेस में आप देख सकते हैं, पुराना होगा लेकिन भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने पहले बनाए थे अपने जमाने में। और यहां तक कहते थे, बोले ये जो आप कीर्तन करते हैं, वो खोल करता लेके वो तो है, लेकिन इनसे बड़ा वाइडर कीर्तन, बृहत मृदंग, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते थे। इस प्रकार तो उनका भी यही इच्छा रहता था, और उनके चलते प्रभुपाद जी की वही इच्छा रहता था, वो पूरे परंपरा से वही शिक्षा आया है, वही ज्ञान आया है, वही कृपा आया है। तो अगर इस प्रकार से हमने अपने आप को, सेवा तो अवश्य है लेकिन सेवा के साथ साथ साधना का एक मुख्य अंग ही होना चाहिए भगवत वाणी के प्रचार। और तभी जमाने में भगवत वाणी प्रचार करने के लिए कितने कितने कठिनाई था, वो बैलगाड़ी में लेकर गए थे, वो भी चोरी चारी हो गया, बहुत बड़ी घटना हुआ था, तो इसलिए तकलीफ तो होगा, शारीरिक मानसिक पारिस्थितिक पारिवारिक कई प्रकार से डिफिकल्ट होगा, हमारे नहीं ये सब डिफिकल्ट है, इसमें नहीं होता, हम मंदिर में रह जाएंगे, इस प्रकार हम सुविधा को केवल ढूंढेंगे, परेशानी को डरेंगे, तब हम साधन भजन से प्रवृद्ध नहीं होंगे, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे। आज सुबह समय में प्रभुपाद जी कोट पढ़ रहा था, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अपोजिशन इज आवर विक्ट्री, जिस काम में आपको खूब जम करके विरोध हो रहा है तो मानो ये जेन्युइन काम है, ये पक्का काम है, इसलिए विरोध हो रहा है, वही उसका साइन है और वही वो के विजय है, जितने विरोध होगा इतने मानो कि आप सफल हो रहा है, ये प्रभुपाद जी का कहना। तो इस प्रकार हम देखते हैं जितने जितने महान भक्त भगवत प्रचार के लिए जीवन पर्यंत समर्पण किए हैं, तो किसी को ऐसे आसान से सब कुछ मैं चाहता हूं मेरे सब कुछ हो जाए, ऐसे कुछ नहीं हो रहा था, कितने कितने महान महान विपद आया है, लेकिन फिर भी उनको सामना करके तभी भगवत कृपा के पात्रता बने। हम तो कभी कभी जब हम ट्रेवलिंग संकीर्तन में जाते थे, बुढ़ी स्टेशन लेकर के 40 किलो के थैला लेकर घूमे, कोई लोग पूछते नहीं है, कई कई लोग बोलते हैं आप एजेंट है क्या, कितने कमीशन मिल रहे हैं आपको, हाँ एक व्यक्ति हमको पूछा भी था क्या कमीशन मिलता है, बताओ ये पढ़े लिखे लड़का है ये क्या कर रहे हैं, उसने कहा भाई अच्छा होता होगा आपको, मैं बोला उनको, वो भी बड़े पढ़े लिखे लोग थे, मैं बोला भैया एक बात बोलो बुरा नाम नहीं, क्या बोले अगर हमको बिजनेस करना है ये मैं आपके पास लाया, मैं कितने आप लेना चाहते हैं, 100 रुपया कीमत है, कैसे लो, बोले जब आप ही पढ़े लिखे समझदार नहीं लेते हैं, मैं सुबह से शाम तक घूमता हूँ सारे ऐसे ही आपके और बदतर निकलते, कोई लेना नहीं चाहते, मार्केट में उसका डिमांड नील, जिस चीज का मार्केट में डिमांड नील कौन बिजनेसमैन इस प्रोडक्ट को बिजनेस करेगा, कौन महामूर्ख का उसको करेगा, अरे आलू प्याज भी अगर रेडी में ले जाऊं वो बेच जाएगा, इसको तो कोई नहीं चाहता है खरीदने के लिए, उसी को बेचने के लिए हम जा रहे हैं, ये तो बिजनेस है, इसमें कमीशन मिलेगा, अरे कमीशन तो उस चीज में लेना चाहिए जो मार्केट में डिमांड है, फटाफट जाओ सेल हो गया कमीशन में, ये तो कोई नहीं ले रहा है, नो सेलिंग ना, बात तो सही है, हम दूसरे नहीं ले रहे हैं, ये जो गीता भागवत आदि लेकर जाए उसको कोई नहीं चाहता, सब बोलते हैं हाँ है पड़ी है इसे दे दो, तो इसमें कोई बिजनेस करेगा कोई ये मांग हो तो समझ गया, बोला बात सही, फिर क्यों कर रहे हैं, बोले बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है, हम तो केवल उन्हें क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो फल तो हो नहीं, के लिए वो फल आप नहीं समझ पाएंगे क्या है, हम अपने भक्त लोग को बोलते थे मगर देखो ये पुस्तक जब बना है तो भगवान की इच्छा से बना है, वो तो किसी ना किसी को मिलेगा और जो उनके भक्त होगा वह जैसे उनको मिलेगा, वो तो मिलेगा। आप दो या ना दो कोई बड़ी नहीं है, किसी ना किसी ने देगा, किसी ना किसी को मिलेगा, ये रहना नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन को सफल करना धन्य करना चाहते, माध्यम आप बने, निमित्त मात्रम हो सत्य, आप निमित्त बन जाओ, काम तो ठाकुर जी करवाएंगे। बोले नहीं हो रहा है, बोले खुश रहो। हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि हम मिनिमम 5 घंटा 6 घंटा जितना हमारा होता है अपना साधन भजन के बाद, 4-5 घंटा 6 घंटा जितने आप हो सके शाम के अंदर, इतने समय में बाहर जाऊंगा, लोगों को पुस्तक दिखाऊंगा, उनको पूछूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो ले ना ले ये मेरे ऊपर नहीं। भगवान कहते हैं कर्म करने में अधिकार मुझे जी दिया है, फल में अधिकार मत करो, मार पड़ेगा। मां फलेषु कदाचन कर्मणे अधिकार अस्तु। तो हम लेबर है, काम कर सकते हैं, रिजल्ट ठाकुर जी के ऊपर हो, दे नहीं दे तो आप लेकर के पूरे दिन भर घूमो, बिल्कुल नहीं हुआ, आप संतुष्ट हो कि मैं मेरा कोटा पूरा किया, मैं 5 घंटा मेहनत किया, 50 लोगों से मिला कि 100 लोगों से मिला, दैट्स इट, आपका ड्यूटी ओवर। अगर पूरा ब्याग खाली हो गया तब भी खुश मत हो, क्योंकि ठाकुर जी ने करा, आप नहीं किया, आप अपना ड्यूटी किया। तो हमेशा हम आपने हम कर्म इंद्रिय मिला है, हम करनी है, काम करने का अधिकार भगवान ने दे, काम करके ही संतुष्ट हो जाओ, फल की इच्छा मत करो, वो ठाकुर जी हैं वो करने के लिए, वो चाहे कब देंगे नहीं देंगे, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है इसमें हम करें तब भगवान प्रसन्न कृपा करेंगे। तो इसी प्रकार भावना रखेंगे तो कभी आप डिस्ट्रेस होगा नहीं, कभी डिमोरलाइज होंगे नहीं, आपने होने का नहीं, क्योंकि अपना जो क्षेत्र काम है, बाकी मैं 5 घंटा मेहनत करूंगा, 50-100 लोग मेरा टारगेट, उनको मिलूंगा, जब एक भी नहीं हो कि सब हो जाए, डजंट मैटर, मतलब कि नहीं। अगर इसी प्रकार करेंगे तो भगवान करने कराने वाले वो कराएंगे, वो कराएंगे। और सचमुच जो सबसे प्रचारक है उनका जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए क्या, किसी प्रकार से हम ढूंढे हु इज फेथफुल, श्रद्धालु कौन है, श्रद्धावान व्यक्ति को ढूंढ के उनके पास पहुंचो, बोलना ज्यादा पीछे नहीं करना, वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि श्रद्धा उनके पास है, वो तो फटाफट बढ़ेगा। तो हमारा अश्रद्धालु के पास जाकर टाइम एनर्जी खराब करो कुछ नहीं होगा, अब पागल होकर आएंगे। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, तो हमारा कर्तव्य ढूंढते ढूंढते गली मार्केट में कौन श्रद्धालु कहां भगवत चित्त वाले भक्ति बैठे हैं वो है, उनके पास जाना ये हमारे कर्तव्य है। हम उनके पास पहुंचे तो आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि भगवान प्रसन्न होंगे। जब आत्मा सुप्रसिद्धति, आपके आत्मा ही सुप्रसन्न हो जाएगा तो आपको प्रसन्न होने का न होने का कोई चांस ही नहीं। तो ये है हमारे जो भी ब्रज के परंपरा के आचार्यगण है, भगवान से लेकर अब तक सभी के यही भावना रहा, यही इच्छा रहा, तो इस परंपरा में इस प्रकार हम चाहें तो स्वयं के सुविधा के और ध्यान न रख करके भगवत प्रसन्नता के लिए और हमारे साधना के सिद्धि के लिए अगर इस प्रकार के प्रचार की भावना रखें और श्रद्धालु लोगों के पास ढूंढें, कहीं ना कहीं कोई एक तो मिलेंगे, आज नहीं तो कल, तो कल नहीं तो परसों ढूंढो, और आपके परिश्रम से भगवान वही देखना चाहते हैं, फल उनके हाथ में दे देंगे, किस प्रकार कब देंगे ये उनके ऊपर है, हमारा हाथ में अपना कर्म परिश्रम है वही हमको करना चाहिए, इससे ही हमारा जीवन की सफल होगा और भगवान प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। शायद प्रश्न होगा तो आप प्रभु जी लोग से विचार कर लेना, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मैं जा रहा हूं। हरे कृष्ण। ओके समवेत भक्त वृंद की, श्री राधा रमण लाल की, इताय गौर हरि प्रेमानंद।